बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम हरि ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तंति दिव्ये सवे वेदैशांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो शंकर भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंदघन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ बड़े भाव और श्रद्धा के साथ प्रातःकाल की इस मंगलमय पावन शुभ बेला में बैठकर विचार कर रहे थे अंतःकरण की शुद्धि। श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव भगवान ने दिया। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावर्यत् शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम्। जिसकी बुद्धि इसका सम नहीं है अर्थात जिसके अंदर नायुक्तस्य भावना, जिसका भाव चित शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, भगवान कहते हैं शांति कहाँ। अशांतस्य कुतः सुखम्। अशांत अशांत जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसे शांति कहां प्राप्त हो सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम्, जो अशांत है उसे सुख की कहां प्राप्ति हो सकती है। पहली बात तो हम सब लोग शांति चाहते हैं, कोई अशांत होना नहीं चाहता। और शांति कैसे प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं चा भाव्यत, जिसकी भावना युक्त है अर्थात शुद्ध है, शुद्ध भाव से, मन के शुद्ध भाव से, चित्त के शुद्ध भाव से, बुद्धि के शुद्ध भाव के होने से ही शांति की प्राप्ति होती है, और जो शांत है उसे ही सुखानुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और जिसका जिसे शांति की प्राप्ति नहीं, जिसे शांति की अनुभूति नहीं, जिसके पास शांति का अभाव है, उसे सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है। यदि ऐसे सहज रूप में हम कहें तो ये कहेंगे कि हम सब लोग शांति चाहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए बस जिससे परम शांति प्राप्त हो, क्योंकि शांति में ही सुखानुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। बोले विचार करें कि शांति तो स्वरूपस्थ है, परंतु अशांति क्या है, जिन जिन कारणों से अशांति है यदि वो कारण ठीक कर लिए जाएं, तो शांति तो स्वस्वरूप में है। पहला कारण मन का अशुद्ध होना, माने वासना से युक्त होना, और वासना मन से दूर करने के लिए भगवान की उपासना का आश्रय किया, भगवान के समीप मन को रखा, चित्त की शुद्धि के लिए भगवान के स्वरूप का मनन और चिंतन किया, शास्त्र का मनन चिंतन किया, सत साहित्य का मनन चिंतन किया, गुरुजनों के वचनों का मनन चिंतन किया, उससे चित्त शुद्ध हुआ और बुद्धि की पवित्रता के लिए, बुद्धि की शुद्धता के लिए सत्संग श्रवण मनन और नीति ध्यासन रूपी साधन के द्वारा, जो अंतरंग साधन है, भीतरी साधन है। साधन भी दो तरह के शास्त्र कहते हैं, एक बहिरंग साधन बाहरी साधन और एक भीतरी साधन। बाहर का साधन है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुक्षा, ये बाहरी साधन है, तो भीतरी साधन है श्रवण हो, मनन हो और नित्य ध्यासन हो। श्रवण मनन नित्य ध्यासन के द्वारा बुद्धि की पवित्रता हुई, अर्थात बुद्धि में जो अहम वृत्ति अहंकार है वो निवृत्त हुआ, अहंकार हटा, बुद्धि शुद्ध हुई, और शुद्ध बुद्धि में ही शांता स्वरूप जो हमारा अपना स्वरूप सुख स्वरूप है, स्वांताय सुखाय, अपना अंतस ही सुख स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं, अर्थात शास्त्र कहते हैं। सुख स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए, और हम सब लोग सुख की चाह को लेकर संसार में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, किसके लिए, बोले सुख के लिए। सुख के लिए कुछ भ्रांतियां हमारी बुद्धि में जरूर हो गई हैं। पहली भ्रांति ये हो गई है कि सुख समझ लिया विषयों में, और सुख समझ लिया विषयों के भोग इंद्रियों से प्राप्त होने पर, सुख समझ लिया मनोराज में, सुख समझ लिया मनोराज में कि सुख अभ्यास जन्य सुख अभ्यास में। कुछ लोगों ने सुख समझा अभ्यास में, कुछ लोगों ने सुख समझा मनोराज्य में, कुछ लोगों ने सुख समझा विषय में, और कुछ लोगों ने सुख समझा विषय के भोग इंद्रियों में। विषय और भोगने वाली इंद्रियां जब दोनों मिलती हैं तो तब सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ये सुख के प्रति कुछ भ्रांति हो गई है, इनमें से पहली जो भ्रांति है विषय में सुख है ये बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि विषयों में सुख नहीं है। बोले भोग में सुख है, भोगों को भोगने वाली इंद्रियों में सुख है। बोले सुख वहां भी नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत स्वादु स्वादिष्ट भोजन के करने पर सुख मिलता है, भोजन में सुख समझा, बड़ी जोर की भूख लगी है, थाली परोस करके हमारे सामने रखी है और जब भोजन सामने है तो हमें उस भोजन के तो सामने है प्राप्त है। भोजन के प्राप्त मात्र हो जाने से हमारी भूख नहीं मिट जाती है, भूख शांत नहीं हो जाती, भूख का जो दुख है वो दूर नहीं हो जाता। तब आप कहते हैं कि भोग के केवल प्राप्त करने से सुख नहीं है, वो तो भोगने से सुख है। भोगने वाली इंद्री भी आपके पास है, जिससे भोजन आप ग्रहण करेंगे वो मुख वो जिह्वा भी आपके पास है, भोजन भी आप दोनों के प्राप्त होने से, भोग और भोग को भोगने वाली इंद्रियों को प्राप्त होने से सुख है। बोले वो दोनों चीजें हमें मिली हुई हैं, परंतु भूख तब भी है। तब कहा कि जब भोग और इंद्रियों का संयोग होगा तब सुख की अनुभूति होगी, तब सुख मिलेगा। भोजन का संयोग जीवा के साथ हुआ, जीव के साथ भोजन लगा और जीव ने उसे कंठ से ऊपर अंदर कर दिया, भोजन पेट में चला गया। भोजन के पेट में चले जाने के उपरांत जैसा सुख जैसा रस आपको, जब तक वो भोजन का संयोग जिह्वा के मुख के अंदर था उतना ही स्वाद उतना ही आनंद आपको पेट के अंदर जाने से भी मिलता है क्या? वही रस मिलता है? नहीं मिला। तो इससे ये स्पष्ट क्या होता है कि जो संयोग जन्यक, जो दो के संयोग से जिसकी प्रतीति होती है वो प्रतीति मात्र है, वो वास्तविक नहीं है, वो केवल एक आभास है। ये सुखाभास तो है, सुख का आभास तो कराती है। विषय और इंद्रियां दोनों जब मिलते हैं तो सुख का आभास कराते हैं, परंतु वास्तव में सुख नहीं है। और इसी आभास को हमने सुख समझ लिया है और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए, और इस आभास जन्य सुख, जिस आभास को हमने सुख समझ लिया है, बस इसी सुख को हम हमेशा शाश्वत रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु नारायण आभास कभी शाश्वत नहीं हुआ करते, वो हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं हो सकते। आभास नित्य नहीं होता, क्योंकि जो दो के संयोग से प्रतीत होता है, जो संयोग होता है वही प्रकृति का नियम है कि वियोग भी होता है। भोजन का संयोग जीव के साथ कितनी देर तक रह सकता है, कितनी देर तक जीव अपने ऊपर भोजन को सह सकती है? रसगुल्ला आपको बहुत अच्छा लगता है और आपने उसे अपने मुंह में रखा, मुंह के अंदर रसगुल्ला आप कितनी देर तक रख सकते? और थोड़ी सी देर अधिक होने पर आपके अंदर ऊब पैदा होगी, आपको बेचैनी पैदा हो, आपको कोई कह दिया जाए कि तुम बस से मुंह में रख के रखना, निगलना नहीं इसे, तो आप कितनी देर तक रख सकते हैं? अर्थात दो के संयोग से जो प्रतीत होने वाला सुख है वो सुख स्थायी सुख नहीं हो सकता, वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो तो केवल मात्र एक आभास है। इसलिए उसको हमने सुख समझ लिया है, बस उसे सुख रूप जानकर हम उसे इकट्ठा करने में लग गए। इसे सुख समझ लिया है और दूसरा सुख की बड़ी भारी भ्रांति हो गई है। सुख कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं अरे सुख तो मन में है। सुख तो मन के अंदर है। मान लो हम मन के अंदर सुख मान लेते हैं तो मनोराज्य में, मनोराज कैसा होता है? केवल पाने की आशा मात्र करके, आशा और निराशा के साथ मिलने वाला सुख दुख। आशा कर ली, एक मजदूर को एक सेठ ने आज्ञा की कि ये मेरा तेल का भरा हुआ घड़ा तुम मेरे घर पहुंचा के आओ। तेल का घड़ा मस्तक सिर पर रखकर मजदूर उठाकर जब ले जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था, तेल का घड़ा सेठ के घर पहुंचाऊंगा, सेठ मजूरी देगा, मुझे पास पैसा आएगा, और उस पैसे के आने से क्या करेगा? उसने सोच लिया कि पैसा आने से मैं व्यापार कर लूंगा, व्यापार करने से और पैसा बढ़ जाएगा, तब तू क्या करेगा? बोले फिर मैं अपना व्यापार बढ़ा करके फिर मैं अपने लिए मकान बना लूंगा। जब तेरे पास मकान भी हो जाएगा, व्यापार भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगी, घर हो गया, दुकान हो गई, दोनों चीज तेरे पास हो जाएंगे, तो दुकान मकान के होने पर फिर मैं अपना ब्याह कर लूंगा। अच्छा अब तुम ब्याह कर लोगे और फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास और पैसा होगा। कहा ब्याह करके फिर मैं सुख से रहूंगा और मेरी स्त्री होगी, मेरे पुत्र होगा। और तब वो मन में सोचता है पुत्र होने के बाद क्या होगा? बोले क्या होगा, पुत्र को पाल पोस के बड़ा करूंगा, फिर उसका विवाह करूंगा, और उसका विवाह होने के बाद मेरे फिर पोते हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, तब तक मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, और फिर मेरे पोते और मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरी पत्नी, सभी परिवार के लोग मेरी सेवा करेंगे, तब तुम क्या करोगे? बोले मैं तखत में गद्दा बिछाकर मस्तकिया लगाकर बड़े आराम से बैठूंगा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं बहुत सुख से आराम से रहूंगा और सब मेरी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, और मेरे पोते मेरे पास आकर कहेंगे दादा चलो खाना खाओ, और मैं अपनी मनवार करवाने के लिए कहूंगा नहीं। जैसे उसे नहीं करके सिर हिलाया, वो तेल का मटका गिरा और फूट गया। अब तो वो बड़ा घबरा करके वापस आया। सेठ ने पूछा भैया तेल का घड़ा घर पहुंचा के आए? कहा नहीं सेठ जी, क्या हुआ? वो फूट गया, तूने मेरा तेल का भरा हुआ घड़ा फोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया, फटकार लगाए। तो रोता हुआ कहने लगा हुजूर आपका तो तेल का ही घड़ा ही फूटा, मेरा तो सारा संसार फूट गया। ये है मनोराज। हम अपने मन से कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं, भविष्य की बड़ी बड़ी सुनहरी सुनहरी कल्पनाएं, योजनाएं, आने वाले समय पर हम ऐसा करेंगे या तो हम जीते हैं नारायण भविष्य के साथ, या हम जीते हैं अतीत के साथ, बीत चुका है जो भूत हो गया। भूत ऐसा चिपकता है, ये छूटता ही नहीं है, और या हम लोग भविष्य के साथ जीवन जीते हैं, भविष्य की आशाओं के साथ, भविष्य की चाहों के साथ, आशा हो गई और आशा करके सुखी हो जाते हैं और निराश होकर दुखी हो जाते हैं। सुख इन सुंदर आशाओं के अंदर, अपनी सकारात्मक सोच के साथ जब हम भविष्य के लिए बढ़ते हैं तो हमें बड़ी सुख की अनुभूति होती है। समझ लिया कि इन सब चीज में सुख है, पर विचार करें यहां भी जब आप अपने लिए सोचते हैं, आशाएं करते हैं, इन आशाओं में आपको सुख का आभास होता है, वास्तविक नहीं है, ये भी केवल आभास मात्र है। और सुख समझ लिया किसमें? अभ्यास में। अभ्यास जो हमारा चल रहा है, जैसे हमें रहने का अभ्यास है, जैसा हमें पहनने का अभ्यास है, जैसा हमें खाने का अभ्यास है, जैसा सुनना और देखने का अभ्यास है, बस उसके बराबर मिलता रहे, वो वैसे के वैसे आगे से आगे हमें मिलता जाए, हमने समझ लिया बस इसमें सुख है। और उसी को सुख मान करके हम जीने लगते हैं। और जो हमारे उसके थोड़ा सा विरुद्ध हमें मिल गया, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी यात्रा में निकले और जो हमारे घर का वर्षों की हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है, उस अभ्यास के अनुसार उठते हैं, उसी अभ्यास के अनुसार सोते हैं, चलते हैं, खाते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हम बड़े खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हमने सुख किसमें समझ लिया है? अपने अभ्यास में। ये तो केवल अभ्यास जनिक सुख है नारायण, ये सुख का आभास है, वास्तव में सुख इसमें भी नहीं है। ये सुख के प्रति कुछ भ्रांतियां हमारे अंदर हो गई, इसलिए विचार करना होगा। भ्रांति जो हो जाती है वो दुख का कारण होती है हमारे लिए। सर्प दुख का हमारे लिए सर्प का अज्ञान दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? बोले अज्ञान से होने वाली भ्रांतियां दुख का कारण। हम बैठे हैं, हमारी कुर्सी के नीचे सांप आकर बैठा हुआ है, आपको कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी कुर्सी के नीचे सांप बैठा हुआ है, आप बड़ी मस्ती से बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आपको सर्प का अज्ञान कोई कष्ट दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है? कोई तकलीफ नहीं है आपको, बड़े आनंद से बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ हो गई? सुबह उठे, बाथरूम जाने के लिए निकले और हो सकता है कि वो बात कहीं यात्रा में निकले हैं, आपके कमरे से बाहर निकलकर कुछ कदम में बाथरूम में आपको जाना है, पर वहां पर आपने देखा कि दरवाजे के आगे एक लंबी सी काली सी चीज पड़ी हुई है और आपने उसे सर्प समझ लिया और भागकर आप लौट आए कि दरवाजे में बड़ा भारी सांप बैठा हुआ है, आपकी सांसें फूली हुई हैं, आप बड़े डरे हुए हैं, घबराए हैं, बड़े बेचैन हैं कि वहां सांप है। इतने में आपके साथ वाले ने भी चलकर देखा, जरा गौर से चलकर देखा तो वो तो प्लास्टिक का सांप है, वास्तविक सांप नहीं है। तो सांप का अज्ञान दुख का कारण हुआ या सांप की भ्रांति दुख का कारण हुई? जो रस्सी में सर्प की प्रतीति हो गई, प्लास्टिक में सर्प की प्रतीति हो गई, कल्पना हो गई, वो आपके लिए दुख का कारण है नारायण। कारण दुख का अज्ञान नहीं है। अज्ञान से होने वाली जो भ्रांतियां हैं वो हमें दुखी करती हैं। इन भ्रांतिवश दुख है। इस प्रकार जो हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है सुख के लिए, सुख के लिए जो बुद्धि भ्रमित हो गई है वही बुद्धि हमें दुखी कर रही है। जब तक ये बुद्धि से भेद भ्रांति दूर नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए आइए सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख के लिए जो हमारी बुद्धि में भ्रांतियां हो गई हैं उन्हें दूर करना है। ये तो केवल सुखाभास है, वास्तव में सुख कहाँ है? बोलिए, वास्तविक सुख तो स्वरूपानुगत स्वरूप में, अपने भीतर, अपने आप में, आपका जो अपना मैं है, जिसे आप मैं कहते हैं, वो अत्यंत सुखद स्वरूप है। इसलिए उस सुख के अंत को प्राप्त करने के लिए अशांतस्य कुतः सुखम्, शांत हुए को, शांत पुरुष को ही सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ शांत से अभिप्राय है जिसकी वासनाएं शांत हो गई हैं, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जिसकी बुद्धि में भ्रांतियां दूर हो गई हैं, सत्संग के श्रवण से, मनन से और नित्यध्यासन से। जो हम सुनते हैं, श्रवण होगा, श्रवण से मन की वासनाएं कम होती हैं, मनन से चित्त शुद्ध होता है और नित्य ध्यासन से बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए श्रवण करो, बोले मन से होना चाहिए, श्रवण मन का काम है और मनन चित्त का काम है, नित्य ध्यासन बुद्धि का काम है। ये अंतरंग साधन है, इन साधनों के साथ युक्त होकर श्रवण कैसे हो? हम सुनते तो हैं, जाकर बहुत लोग कहते हैं हमने इतने संत सुन डाले, इतने संतों को सुन डाला हमने, गीता सुन डाली, भागवत सुन डाले, उपनिषद सुन डाले, ब्रह्मसूत्र सुन डाले, सब डाल देते हैं, रखता कोई नहीं है। उपनिषद सुना और डाला, गीता सुनी और डाला, अब सारे धर्म ग्रंथ सुन डाले हैं हमने, अब हमें कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, डाल दिए, रखा ही नहीं अपने पास कुछ, बचाया ही नहीं, सब छोड़ दिया। ऐसा मत करो नारायण, सत्संग सुनो, सुन करके उसे विचारो, विचार पूर्वक उसे अपने अंदर मनन में लाओ और मनन के साथ बुद्धि उसका नित्य अभ्यास करे, बुद्धि से उसमें आचरण हो, तब जाकर कहीं बात बनती है। और भगवान कहते हैं कि सुख उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। सुख को प्राप्त करना तो सब चाहते हैं, शांत पुरुष को ही, ये कह दीजिए कि शांत पुरुष को ही सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है। सुख को प्राप्त करना सब कोई चाहता है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऐसे पूछा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए ही कर रहा है। जहां उसके अंदर सुख की आशा न हो वो कभी उसके नजदीक भी न जाए, यदि कहीं वो निकट होता है तो उसके पीछे एक आस रहती है सुख की, इससे सुख मिलेगा। पर वास्तव में सुख मिलेगा जब आप अपने स्वरूप के निकट होंगे, आत्मस्थ होंगे, अपने भीतर होंगे। और उसके लिए आइए बैठिए, संयम पूर्वक इंद्रियों को, जैसा कि पहले उदाहरण दिया था, कुर्म अंग नियो, कुर कछुए के अंग के समान अपनी बहिर्मुखता को समेटिए, भीतर कीजिए ना, ये बहिर्मुखता इंद्रियों के छिद्र से निरंतर आपकी ऊर्जा बहिर्गत हो रही है, बाहर की ओर दौड़ रही है। एक नाव में एक छेद हो जाए तो दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है, नौका में एक भी छिद्र हानि का कारण बन सकता है। और आपने कभी सोचा कि आपके शरीर में कितने छेद हैं? 9 छिद्र 9 छेद हैं। और इस 9 छेदों वाली नौका में बैठकर आप इतना बड़ा बहुसागर पार करना चाहते हैं तो कार्य तो दुष्कर है, कठिन है। परंतु जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है, जिन जो अपने संकल्प में और अपने श्रम में तत्पर हैं, प्रयास जो अपनी कोशिश में तत्परता के साथ लगे हुए हैं, जो कभी अपने पुरुषार्थ से हटते नहीं, मुझे इस पर एक छोटी सी बात याद आ रही है कि राम जी समुद्र के किनारे खड़े हैं और उनकी सेना पुल बांधने का काम कर रही है। पुल का बांधन का कार्य चल रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी देखती है कि राम जी की सेना बड़े बड़े पत्थर बांध करके पुल बांध रही है। उसने मन में सोचा कि 2 पत्थरों के बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है, पत्थर ऊपर नीचे हैं, बराबर एक साथ नहीं है। जब इन पत्थरों के ऊपर राम जी पांव रख करके चलेंगे तो वो पत्थर के नोक उनके पांव में गड़ेंगे और इससे मेरे प्रभु राम को कष्ट होगा। ये पत्थर के नुकीले पत्थर भगवान के पांव में गड़ न सकें। उसके लिए गिलहरी मन में सोचने लगी कोई उपाय करना चाहिए। उपाय उसको और कुछ नहीं सूझा, यही उपाय करने लगी कि वो समुद्र के किनारे रेत में जाए और अपनी पूंछ को रेत में लपेटे और लपेट करके वो जो 2 पत्थरों के बीच खाली जगह रह गई उसमें जाकर के झाड़ती है। फिर वो गिलहरी आती है, समुद्र में अपनी पूंछ को भिगोती है और उसमें रेत लपेटती है और फिर जाकर झाड़ती है उसमें। वो ये काम कर रही थी और बड़े बड़े बानर भट्ट बानरों ने कहा कि देखो गिलहरी बहुत छोटी हो तुम, बार बार बीच में आ रही हो, हमारे को बड़ा भारी व्यवधान आ रहा है, इसलिए तुम हट जाओ, पांव के नीचे दब करके मर जाओगी। और उस नन्ही सी गिलहरी कहती है सुनो तुम अपना काम करो, मेरे काम में तुम विघ्न मत डालो जो मैं कर रही हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तुम देखो मेरे कार्य में विघ्न मत डालो। उससे पूछा तू क्या कर रही है, गिलहरी मन में सोच रही है और उस भावना के साथ काम कर रही है। कथा केवल एक मनोरंजन की नहीं है, बात ये समझने की है कि छोटी सी गिलहरी कितना बड़ा साहस कर बैठी है। कोई ये सोच ले कि गिलहरी की पूंछ में कितनी तो रेत आएगी और उससे क्या पत्थरों को वो बंद करेगी, ये कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा। गिलहरी ने कब सोचा, वो तो अपने साधन में तत्परता के साथ जुटी हुई है। जिसके अंदर अपने साधन के प्रति ऐसी तत्परता और लगन होती है, श्रम साधन और समय के साथ जो लोग लग जाते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए लक्ष्य दूर नहीं रहता। जो अपने इस लक्ष्य को देख करके, एक महात्मा कहा करते थे, उनके पास जाकर किसी ने कहा, महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है, वैराग्य करना और साधन करना बड़ा कठिन काम है। महात्मा कहते थे, यदि तुम मनुष्य होकर के नहीं कर सकते हो तो फिर ये कौन सी योनि में जाकर करोगे। मानव के लिए साधन करना कठिन नहीं है, यदि उसके अंदर लगन है और वो चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी जीत होती है। नारायण जीत होती, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और बहुत से लोग कहते हैं क्या भगवान मिलते हैं, पहली तो ये बात ही का विश्वास ही नहीं है कि उन्हें भगवान मिलते हैं। एक गांव में एक संत गए और गांव वालों ने महाराज से प्रार्थना की, बोले महाराज आप हमारे गांव में पधारे हैं तो हमको कुछ उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। गांव वालों ने प्रार्थना की, महात्मा मान गए तो अब सत्संग की व्यवस्था हुई, बड़ा 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 मंच बनाया गया और सब लोग गांव के वहां आकर के बैठ गए तो महात्मा ने उन सब से कहा, एक बात पूछी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भगवान है। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भगवान है। अब कैसे कहें महात्मा को कि भगवान नहीं है, जब लोग बोले भगवान है। तो महात्मा ने जवाब दे दिया, जब तुम्हें है ये विश्वास है तो फिर बोलने की कहने की कोई बात ही नहीं है। समझाया तो वहां जाता है, बोला तो वहां जाता है। चुप हो गए महात्मा, बोले महाराज कुछ उपदेश करो। जब कहा उपदेश तो हो गया है, बस इतना ही तो बात है। दोबारा कुछ लोग गए, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, महाराज कुछ उपदेश दीजिए। वही पहले की तरह मंच बनाया गया, महात्मा को बिठाया गया और महात्मा जी से कहा महाराज उपदेश दो। महात्मा ने फिर पूछा, बोलो ईश्वर है या नहीं। तो लोगों ने उत्तर दिया, पहली बार हाँ कह दिया था तो महाराज ने कोई प्रवचन नहीं सुनाया था, इस बार सबने कहा ना तो महात्मा ने क्या सोचा, कहते नहीं है तो शायद महात्मा हमको कोई उपदेश देंगे, तो उन्होंने कह दिया नहीं है। तो महाराज फिर चुप हो गए, बोले जब तुम नहीं है ये निश्चय कर बैठे हो तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है, फिर बोलना ही क्या रह जाता है, बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जब तुम नहीं है यही निश्चय कर बैठे हो तो फिर कोई बात रह नहीं जाती है। और कुछ लोगों ने फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले, इस बार फिर तिबारा प्रयास किया गया, महात्मा से कहा महाराज कुछ उपदेश दीजिए, कुछ प्रवचन सुनाइए। जब उनसे फिर तिबारा प्रार्थना की गई, वही मंच बनाया गया, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ और कुछ लोगों ने कहा ना। तो महात्मा ने कहा जो ना करने वाले लोग हैं और जो हाँ करने वाले लोग हैं, ये आपस में ही निपट ले कैसे हाँ करते हैं, क्यों कौन हाँ कर रहा कौन ना कर रहा, ना करने वालों को यही आपस में तुम ही समझा दो। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि ये तो विचार की बात है, विचार पूर्वक निश्चय के साथ हमारे भीतर जो निश्चय है वो एक होना चाहिए, जो कभी हाँ कभी ना, कभी है कभी नहीं है, इसी उहापोह के अंदर जो हम लोग बैठे रहेंगे तो बात कैसे बनेगी। नारा एक निश्चय के साथ, एक दृढ़ता के साथ एक निश्चय होना बहुत आवश्यक है। कभी हम ना करते हैं, कभी हम हाँ करते हैं, कभी ईश्वर है कभी नहीं है। काम बन गया तो भगवान है, उसने मेरा काम कर दिया, और इच्छा पूरी नहीं हुई, जो चाहा वो नहीं हुआ, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ काम नहीं बना। कभी हाँ कर देते हैं, कभी ना कर देते हैं। ऐसे इस प्रकार की बात से, ऐसी अस्थिरता से, ऐसी अस्थिर मति से शाश्वत नित्य सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसी जो बुद्धि है, जो द्वंद में पड़ी हुई है, हाँ और ना के में उलझी हुई बुद्धि है, उस बुद्धि से आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती। नारायण, आत्मा अनुभूति करने के लिए तो साफ स्पष्ट मति चाहिए, साफ साफ हो, जिसमें द्वंद नहीं हो, दुदलापन नहीं हो। और जो बुद्धि साफ और स्पष्ट है, जिसमें एक दृढ़ता है, एक निश्चय है, और उस एक निश्चय के साथ जो निरंतर आगे बढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं, चाहे भले ही वो कितना ही कठिन क्यों न हो। एक गिलहरी के प्रसंग से, गिलहरी के इस साहस को देखकर भगवान श्री राम ने इतनी सराहना की, इतनी प्रिय हो गई ये गिलहरी कि भगवान स्वयं अपना कर उसके शरीर पर घुमा देते हैं। तो कहते हैं, किंवदंती है कि भगवान श्री राम की उंगलियों की छाप उस गिलहरी के पीठ में अंकित हो गई, जो उसकी शरीर की सुंदरता को बढ़ाती है। सुंदर सुंदर तीन रेखाएं जो गिलहरी के पेट में, पीठ में दिखाई पड़ती हैं शरीर पर, ये भगवान श्री राम के उंगलियों के निशान हैं, ऐसी किंवदंती है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि वो भगवान की प्रिय बन गए, प्रियता को प्राप्त कर लिया, केवल उसके दृढ़ निश्चय ने, दृढ़ निश्चय के साथ, जो संयम के साथ अपने मन को शुद्ध करने के लिए श्रवण करते हैं, और संयम पूर्वक मन की वासना को मिटाने का जिन्होंने निश्चय कर लिया है, मन शुद्ध हो, मन में जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, जो वासनाएं हैं उनके लिए आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक में जब तक घी है, बत्ती है, अग्नि है, तब तक दिया जलेगा, और तो वो दिया कब तक जलेगा, बोले जब तक उसके अंदर घी डलता रहेगा, उसमें बत्ती होगी, तब तक ये दिया जलता रहेगा। यदि उस पात्र में घृत न डाला जाए, घी तेल न डाला जाए, तो धीरे धीरे बत्ती जल करके समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसी भांति आपके अंतःकरण में वासना का दिया, वासना, और जब तक इन वासनाओं के अंदर और वासनाएं नहीं होंगी, तो जो पुरानी वासनाएं हैं, ये तो भोग करके, जैसे दिया जल करके, बत्ती जलकर समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही पुरानी वासनाएं तो उन वासनाओं के अनुसार जो भोग है वो प्राप्त होकर जलकर समाप्त हो जाएंगे, भोग 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 कर समाप्त हो जाएंगे, परंतु नई वासना का घृत आपके अंतःकरण रूपी दिए के अंदर न डलने पावे, इस बात के लिए सावधान, नई कोई वासना जन्म न ले। सावधानी इस बात की रखनी है कि हमारे भीतर नई कोई इच्छा, नई कोई वासना पैदा न होने पाए। यदि कोई नई चाह को लेकर, नई भोग वासना को लेकर, वासना के वशीभूत होकर कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सकाम कर्म जो वासना से प्रेरित होकर किया है, वो हमारे लिए भोग के लिए विवश करेगा। इसलिए हमारे अंदर जो हम जो कर्म करें उस कर्म की वासना न रह जाए, अर्थात उसके भोग की आसक्ति न रह जाए, वासना न रह जाए, उसके लिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। बोले वो कार्य है केवल केवल जो भगवान के प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो हमारे अंदर वासना पैदा नहीं करता। जो भगवत प्रीत्यर्थ, इसीलिए भगवान ने कहा मत कर्म करता मत परा, मेरे पराण होकर मेरे लिए जो कर्म करता है, मत भक्ति मन में मेरे प्रेम को रखकर, दिल में मुझे रखकर, बुद्धि को मेरे में लगाकर, मत परायण बुद्धि को भगवान में लगाकर, जो मत कर्म करता मेरे लिए कार्य करता है। हमारा बुद्धि में महत्व किसके लिए है? बुद्धि में महत्व संसार के लिए बड़ा है, और हृदय में मन में प्रेम किसके लिए है? बोले जगत के लिए। और शरीर से कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया के लिए, जगत के लिए। तो ये बंधन का कारण नहीं बनेगा नारायण, तो और क्या बनेगा? इसलिए जिसके लिए हृदय में प्रीति होगी, निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में उसके लिए आदर होगा, उसके प्राण होगी। जिसके लिए मन में प्रीति होगी, उसी के लिए हमारी बुद्धि में महत्व होगा। या यूं कहें, जिसके लिए बुद्धि में महत्व होगा उसके लिए मन में प्रीति भी होगी। जिसका हमारी बुद्धि में कोई महत्व ही नहीं है, हमें स्वर्ण का हमारी बुद्धि में महत्व है, सोने का बड़ा महत्व है, महत्व होने के कारण ही तो स्वर्ण को बड़े प्रेम के साथ हम छुपाकर संभाल कर अपने पास रखते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में उसके लिए महत्व है कि ये बहुत मूल्यवान है, और इससे हम जो प्राप्त करना चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। उसके प्रति उसका स्वर्ण का महत्व क्या है हमारी बुद्धि जानती है, पहचानती है, समझती है, इसलिए हमें स्वर्ण से प्रेम है, सोने से प्रेम है। यदि बुद्धि को इसकी पहचान न हो तो मन को सोने से प्रेम न हो। भगवान से पहचान होगी तो भगवान के लिए मन में प्रेम होगा। और भगवान की पहचान कैसे होगी? मने परमात्मा को कैसे उनके महत्व को समझेंगे, बताएंगे कौन? बोली ये शास्त्र बताएंगे, ये संत बताएंगे, इसलिए इनके सानिध्य में बैठें, इनका सत्संग करें। ईश्वर की सर्वव्यापकता, सार्वभौमता, अखंडता, नित्यता, सनातनता, शुद्धता, व्यापकता का हमें बोध हो, उसकी पहचान हो, तो नित्य विभु, शुद्ध जो विभु हैं, परमात्मा हैं, उनकी पहचान होने पर ही मन में उनके प्रति प्रेम होगा, और शरीर से उनके लिए स्वाभाविक कर्म होगा। संसार की वासना कम होगी, उपासना बनेगी। ये चित्त को शुद्ध करने के साधन हैं, अंतःकरण को शुद्ध करने के साधन हैं, जो आपको मैंने विस्तार के साथ भगवान के श्लोक के साथ ही बताया। और इस प्रकार इसलिए अनिवार्य समझें कि पात्र भगवान की प्राप्ति में तो विलंब नहीं है, विलंब है हमारी पात्रता में, विलंब हमारी ओर से है। राजा जनक ने पढ़ा, तत्ववेता तत्व का बोध करा सकता है, तत्वानुबोध इतनी जल्दी हो सकता है जैसे घोड़े के रकाब में पांव रखकर घोड़े में चढ़ने में जितनी देर लगती है उतनी देर में तत्वबोध हो सकता है। महाराज जनक को ये बात बहुत मन भा गई, ऐसा कोई तत्ववेता हो। तत्ववेता कहने वाले, उस समय कहलाने वाले बहुत सारे संत थे जो महाराज जनक के यहां सत्संग करते थे। उन्होंने इस बात की सभा में घोषणा कर दी, परंतु सभी एक दूसरे का मोह देखने लगे। ऐसे समय पर अष्टावक्र ऋषि वहां पहुंचे। उनको जब ये बात कही गई तो अष्टावक्र ने कहा, राजन कहां है घोड़ा, कहां है वो रकाब? सब कुछ लाया गया, घोड़ा सामने रख किया गया और राजा से कहा चढ़ो। जैसे ही चढ़ने के लिए तैयार हुए, पांव रखा और चलने जा रहे थे, इतने में पूछा अष्टावक्र ने कि आगे क्या पड़ा था। तत्वानुबोध हो सकता है और आगे क्या पड़ा था, बात पूरी करो, पात्रता होनी चाहिए, क्या तुम में वो पात्रता है? क्या तुम अपने आप को उस पात्र के योग्य समझते हो? वो योग्यता तुम पर है? राजा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। जैसे ही ये पात्रता तुम पर है, पूछा गुरुदेव ने, राजा जनक उत्तर क्या दें? ये कैसे कहें कि ये पात्रता मुझ पर है, मेरे पास है? जिस पर जिसके पास है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है सो जानता नहीं है। अष्टावक्र के श्री चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के आगे प्रणत हुए, समर्पण हुआ और उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सद्गुरु के चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ समित पाणी उनके चरणों में सोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर के ही उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, वो पात्रता प्राप्त की जा सकती है। सोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अष्टावक्र सामने हैं, गुरु के चरणों में समर्पण हुआ और इस समर्पण को यहीं पर समर्पित रहने दीजिए। यही प्रसंग कल चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, समय हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।